ఓం శాంతి. సభీకో బహుత్ సుందర్ ఏ లాటరీ మిలీ హై తపస్యా కర్నే కి. కభీ సోచా థా కి మే భీ జ్ఞాన్ సరోవర్ మే జాకే ఐసీ తపస్యా కరుంగా. తో ఆప్ సబ్ బాబా కి యజ్ఞ సనే హీ బచ్చే హై. और ये बाबा ने हम सबको बहुत अच्छी स्थिति बनाने के लिए गोल्डन लॉटरी दी है. कितने अच्छे वातावरण में, एकांत शांत पवित्र स्वच्छ, कैसा सुंदर वातावरण है. इसके बीच में आप सब तपस्या कर रहे हो, ज्ञान के गहरे राज, योग की गहराई, सब प्रकार से आत्मा को भरपूर कर रहे हो. ऐसा है ना, क्या अनुभव है आप सबका. देखो कितना वंडरफुल बाबा की ये यूनिवर्सिटी है. मैं सोच रहा था कि एक तरफ यूनिवर्सिटी बाबा कहता है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल कहता है, तीसरी तरफ यज्ञ कहता है. कितने वैरायटी नाम बाबा ने इस स्थान को दिए हैं. यज्ञ क्यों कहा है, यज्ञ कुंड तो बनाया नहीं कहीं. विचार किया है, चलो हॉस्पिटल में तो इलाज होता है, आत्माओं पर जो विकारों की मैल चढ़ी है, रोग बन आ गए हैं, आत्मा को निरोगी बनाने के लिए ज्ञान और योग के इंजेक्शन लगा करके उसको स्वस्थ बनाया जा रहा है. ऐसी सुंदर पढ़ाई हो रही है जो मनुष्य आत्माएं चरित्रवान बने, देव तुल्य बन जाएं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी है. लेकिन यज्ञ क्यों है ये माता है, सोचा है कभी. यज्ञ है, यज्ञ तो भक्ति मार्ग में रचते हैं और वो भी कुंड बनाते हैं, उसमें ब्राह्मण लोग आहुति देते हैं और दूसरों से भी आहुति दिलाते हैं. यज्ञ रचाने वाले सेठ होते हैं. जब कभी भी कोई आपदा आती है, बरसात नहीं होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई विघ्न आते हैं, तो यज्ञ रचते हैं. और यज्ञ के अंदर बहुत वैरायटी सामग्री होती है, तिल, जौ, घी, चंदन की लकड़ियां, क्या क्या डालते हैं यज्ञ के अंदर वैरायटी. और जब भी हम सब अपने शास्त्रों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि भारत के गुरुओं ने जब यज्ञ रचा और उसमें असुरों ने विघ्न डाले तो उसकी रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को दिखाया है. ऐसा यज्ञ था जिसमें असुर लोग गोबर फेंकते थे, कीचड़ा डालते थे. तो बहुत वैरायटी यज्ञ की विशेषताएं हैं. और बाबा ने जब इस विद्यालय की स्थापना की तो पहले इसका नाम दिया राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ. बहुत बड़ा नाम है, पता है ना माताओं को, मालूम है ये यज्ञ का नाम. जिसको मालूम है हाथ उठाओ. नहीं मालूम है, नए नए हैं क्या, नए होंगे. हाँ मुरली में तो आता है, लेकिन राजस्व स्वराज्य के लिए अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता. बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा है. लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है, गीता ज्ञान यज्ञ है, स्थूल कुंड नहीं है. इस ज्ञान यज्ञ के अंदर योग की ज्वाला जलाते हैं भट्टी में. जैसे वो कुंड के अंदर पहले अग्नि पैदा करते हैं, तो हम सब योग अग्नि इसमें पैदा कर रहे हैं, लगन की आग, और इस लगन की अग्नि में जो हमारी कमी कमजोरियां तेल जौ हैं उनको स्वाहा करते हैं, स्वाहा स्वाहा। और जब स्वाहा कर देते हैं तो बाबा कहता है स्वाहा कर दो तो आहा हो जाती है, कलयुग सतयुग में बदल जाता है, सारी आपदाएं खत्म हो जाती है। तो बाबा ने इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की आज से 84-85 साल पहले स्थापना की, 1937 में विधिवत स्थापना हुई, और तब से लेकर के यज्ञ चलता रहा है। यज्ञ का भंडारा कहते हैं, यज्ञ माना जहां यज्ञ रचते हैं वहां पर भंडारा भी चलता रहता है, खाने वाले आते रहते खाते रहते। और बाबा ने कहा है बच्चे ये यज्ञ तो अंत तक चलता रहेगा, बड़े बड़े डिग्रियां बनती रहेंगी, भोग बनता रहेगा, भोजन बनता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यज्ञ का कैसे विस्तार हुआ और कैसे ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को संभाला, यज्ञ की वृद्धि की। बाबा के कई बच्चे इस यज्ञ में, इस विद्यालय में जब प्रवेश लेते हैं, पालना मिलती है, तो वो बहुत स्नेही बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, और हर प्रकार से तन मन धन समय सब प्रकार का सहयोग दे करके। कई बार बाबा कहते हैं जो मेरे सहयोगी बच्चे हैं वो योगी बन जाते हैं, योग लगाने की उनको मेहनत नहीं करनी होती। तो आप सबने इस यज्ञ में आहुति दी है, एक है अपनी कमी कमजोरियों की आहुति, दूसरी है जो कुछ बाबा है सब तेरा है, कुछ नहीं मेरा है। अगर मेरा मेरा रखेंगे ना तो फिर फेरा हो जाएगा, फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, विघ्न आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जो कुछ तुम मेरा समझ रहे थे, तन मन धन समय संकल्प श्वास, उसको अर्पित कर दो, स्वाहा कर दो, मेरा नहीं है बाबा, ये सब आपका है। क्या होगा इसे, आप डबल लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो बाबा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में इतने ब्राह्मणों को, पवित्र ब्राह्मण इसकी सेवा करते हैं, संभाल करते हैं, खुद भी आहुति देते हैं और आने वालों को भी कहते हैं भाई तेरे अंदर कोई भी कमी है कमजोरी है संस्कार है स्वाहा कर दो। किया है सभी ने स्वाहा, कि कोई कोई रखी है अपने पास, और जब स्वाहा कर देते हैं तो फिर रिटर्न नहीं लेते, ऐसे नहीं कुछ कुछ स्वाहा किया कुछ अपने पास रख लिया। सामग्री जितनी भी बचती है ना यज्ञ के अंदर, आप लोगों ने शायद यज्ञ देखे होंगे, तो जब यज्ञ पूरा होने वाला होता है तो बची हुई सामग्री वापस नहीं ले जाते, कुछ सारी की सारी सामग्री उसके अंदर डाल देते स्वाहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारे कलयुगी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ के अंदर स्वाहा होनी है, कुछ नहीं बचेगा। कलयुग का जो इतना विस्तार है ना, ये सब कुछ स्वाहा होना है, क्योंकि नई सृष्टि आनी है, सतयुग की स्थापना हो रही है। तो इस यज्ञ के अंदर हम सब ने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया ही है, सहयोग दिया है ना सबने। जहां पर भी बाबा के छोटे यज्ञ हैं, सेंटर्स छोटे यज्ञ हैं, मधुबन बड़ा यज्ञ है, बेहद का यज्ञ है, यहाँ तो हजारों बाबा के बच्चे आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ कुंड के अंदर अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा करते हैं। तो बाबा ने इस जो रुद्र यज्ञ की स्थापना की, ये नई सृष्टि के लिए की है, सतयुग बनाने के लिए की। लेकिन जब स्थापना होती है तो कई ऐसे असुर हैं हम कहें, जिनकी विपरीत बुद्धि है, वो फिर यज्ञ के अंदर कोई ना कोई रूप से रुकावट डालते हैं, विघ्न पड़ते हैं। और सबसे बड़ा विघ्न तो बाहर वाले कम डालते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भी डालने लगते हैं। अब कहेंगे ये कैसे है? बाबा के बच्चों के बहुत बड़े विघ्न पड़ते हैं, इसमें संभालना पड़ता है। अगर कोई भी ब्राह्मण आत्मा श्रीमत में अपनी मनमत या परमत ऐड करती है तो यज्ञ में विघ्न शुरू हो जाते हैं। जहां पर भी कोई विघ्न आते हैं ना, आप देखेंगे वहां के यज्ञ रचने वाले, यज्ञ को संभालने वाले, यज्ञ में आहुति देने वाले कुछ न कुछ अपनी चलाने लगते हैं, अपनी मत चलाने लगते हैं, वहां पर यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। हमारा यज्ञ सदा निर्विघ्न रहे, सदा आगे बढ़े, सदा उन्नति होती रहे, इतना विस्तार तो हुआ है। कैसे हुआ इतना विस्तार यज्ञ का? हुआ है, देख लो आप, हम लोग जब आए ना शुरू शुरू में, पता कितना बड़ा यज्ञ था। हम आए हैं 71, 72, एक छोटा सा हिस्ट्री हॉल, पांडव भवन में जाएंगे ना, हिस्ट्री हॉल बन गया था बाबा के सामने, साकार बाबा के सामने, इंद्रप्रस्थ बन रहा था, मेडिटेशन हॉल नहीं था, बहुत छोटा यज्ञ। ओम शांति भवन तो बहुत बाद में बना है, छोटा सा यज्ञ, उसमें अगर 100 लोग आ जाते थे तो हम लोग दादी को कहते, दादी बहुत बड़ी सीजन है, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि सब साधन तो कुछ थे ही नहीं, कोई भी साइंस के साधन नहीं थे मधुबन में। अभी देखो हीटर जल रहे हैं, सब साधन मिले हुए हैं। उस समय तो सिगरी जला लेते थे, कोयले की सिगरी जलाते थे, बैठ जाते थे चारों तरफ से, रोटी चूल्हे पर ही बनती थी, गैस नहीं थी, कोई भी ऐसे स्टीम नहीं थी, गैस नहीं थी, सोलार नहीं था, सिस्टम ही नहीं था कोई, धोबी घाट ऐसे पाटे पर करते थे, इतने सब के धोब कपड़े धोना, भट्टी चढ़ाना, ठंडी के अंदर हम लोगों ने तो 11 साल तक ठंडी में खूब धोबी घाट किया है। पहले थोड़ी ठंडी लगती है पानी के अंदर, लेकिन जब छटका लगाना शुरू कर देते हो शरीर गर्म हो जाता है। और इसी ठंडी के बीच में जितनी पांडव भवन के अंदर छतें पड़ी, हर साल एक बिल्डिंग बनती थी, सब बिल्डिंग्स में कोई नौकर बाहर के नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, सब मधुबन वाले लगे हुए हैं। सेवादारी आए, पार्टी आई, क्लास एक सवेरे हो गया, बाकी सेवा करो, कर्मणा सेवा। और आज वो यज्ञ कितना फलीभूत हुआ, यज्ञ के बच्चों ने, यज्ञ स्नेही जो थे उन्होंने अपनी हड्डियां यज्ञ में स्वाहा की। यही स्वाहा करना, ऐसे नहीं यज्ञ ऐसे कोई स्वाहा कर देंगे, लेकिन यज्ञ के अंदर जो दिल से जिगर से सेवा की है उसको कहते हैं हड्डियों को लगा दिया। कहते हैं दधीच ऋषि ने सब हड्डियां भी स्वाहा कर, तो हम सबको बाबा ने इस यज्ञ को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत हमारा सबका साथ लिया, सहयोग लिया। यज्ञ स्नेही बच्चे इसके अंदर अपना सब कुछ लगा करके जरा भी परवाह नहीं किया, ये काम मेरा थोड़ी है, छोटे छोटे काम बाबा के घर में करने में बड़ा आनंद आता था। सब लोग आते थे, सबको कहा जाता था क्लास हो गया चलो भी पत्थर उठाओ, पत्थर उठाओ, तगारी उठाओ, ईंटे लगाओ, तो चुनाई का काम करना, छत डालना, और उसमें इतनी ठंडी कभी कभी होती थी, अभी तो उसके आगे कोई भी ठंडी नहीं है। उस समय की ठंडी मुझे याद आती है जब हम लोगों ने एक बिल्डिंग बनाई लाइट हाउस, जिसमें पांडव मधुबन के भाई रहते हैं, तो जब उस छत पर रात को पानी भरते थे ना, तो सवेरे वो बर्फ की लड़ियां ऐसे लग जाती थी, पूरी बर्फ बन जाती, पानी जम जाता था बर्फ का, और उसके बीच में बाबा ने सब सेवाएं कराई। तो यज्ञ स्नेही जो हैं वो यज्ञ में सहयोगी बन जाते, सब प्रकार का सहयोग। कभी भी ये नहीं सोचा ये काम मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं होगा, लेकिन बाबा के सब स्नेही बच्चों ने यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, इतना सहयोग दिया, जो यज्ञ कैसे फलीभूत होता गया, मेरी आंखों देखे पहले पहले मेडिटेशन हॉल बनवाया बाबा ने, उसके बाद फिर भंडारा बना, सुखधाम बना, विज्ञान भवन बना, ओम शांति भवन बना, और ओम शांति भवन 83 में बना। वो बनते ही पता नहीं क्या बाबा की जादूगरी थी, सब कुछ चेंज हो गया। जो हम लोगों के सब स्थूल कार्य थे, वो साइंस के साधनों ने उनको चेंज कर दिए। स्टीम आ गई, 2 बीघाट की मशीनें आ गई, खाना जो ऐसे बनता था, फिर नौकर रहने लगे, इंजीनियर आने लगे। और दादी जी ने कभी, दीदी जी, जो दीदी मनमोहिनी जी 83 में अव्यक्त हुई, बहुत इकोनॉमी का उधार थे। यज्ञ सनेही बच्चे एक नामी और एका नामी वाले जरूर होंगे। एका नामी समझते हो ना, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। कंजूस को एका नामी वाले नहीं कहते, लेकिन हमारे पास जो शक्ति बाबा ने दी है वो सफल हो, कहीं भी व्यर्थ न जाए। तो देखना, जो यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ स्नेही हैं, वो एका नामी का अवतार होंगे। आज तक हम लोगों ने कोई भी एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। लक्ष्य रखते हैं जितना कम से कम अपने डिपार्टमेंट में खर्चा हो। कभी कभी लोग हम लोगों कहते हैं, तुम तो पुराने जमाने वाले हो, पुराने जमाने वाले हो। हम सोचते हैं पुराने जमाने वाले ठीक हैं। भाई आजकल के लोग आए हैं, वो देखते हैं सब साधन है, सब सुविधाएं हैं, तो हम भी कोई नई मशीन रखें, नई गाड़ी रखें, नए चार साधन रखें, और हमारे पास तीनों स्थानों पर फोटोकॉपी मशीन है, और तीनों स्थानों पर हम सेकेंड हैंड कितने सालों से चला रहे हैं। जो मशीन 9 लाख रुपए या 11 लाख रुपए की आती है नई, वो हम रिकंडीशनर 1 लाख रुपए की लाके चला रहे हैं। और तीनों स्थानों पर, एक नहीं। मेरे को कई बार लोग कहते हैं, हमारे बड़े लोग भी कभी कभी बोल देते हैं, भाई देख नई रख लो। हमने कहा ये भाई लोग हमारे है ना, सब ठीक करके चला रहे हैं, चल रहा है ना काम। अगर कोई रुक जाएगा तब देखेंगे, रुका तो नहीं अभी। आज हम 20-25 साल से, जब से फोटोकॉपी मशीनें आई हैं, तब से लेकर के हम उसी पर चल रहे हैं। एक बार नई किसी ने दिया था, वो थोड़े दिन के बाद वही खराब हो गई। तो इकोनॉमी से यज्ञ में कैसे रहा जाए, वो भी हमारा भाग्य बनता है ना। एक एक चीज दादियों ने सिखाई, कैसे बचत करो। पैसा आ रहा है ठीक है, वो विश्व कल्याण की सेवा में लगना चाहिए। एक भी कौड़ी आपको व्यर्थ नहीं करनी है, ये आपकी नहीं है। एक एक कौड़ी मुहर के समान है। आपके पास भी जो लौकिक प्रवृत्ति वाले हो ना, ये सब बाबा की अमानत है। ऐसा नहीं सोचना ये मेरी है। आपने तो भक्ति में भी कह दिया था भगवान को, हे प्रभु जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, ये तन ये मन ये धन सब तेरा है। कहा है कि नहीं कहा है? जिसने कहा है भक्ति के अंदर, वो तो हाथ उठाओ देखूं। सबने कहा है ना, तो सबने तेरा किया है कि अपना अधिकार रखे हो अभी तक? भाई लोगों ने रखा तो नहीं है कुछ अधिकार। जब ये तन बाबा को दे दिया, जब ये मन बाबा को दे दिया, जब जो भी धन है बाबा आप तेरा है, तो उसको कभी भी मनमत में यूज नहीं कर सकते। यज्ञ स्नेही बच्चे जो है, उनका एक बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने साकार में सिखाया हो, कम खर्च बाला नसीन। कम खर्च बाला नसीन माना खर्चे कम से कम करो और काम अच्छे से अच्छा करो। कई लोग काम कम करते लेकिन खर्चा टू मच कर देते, और बाबा को यही पसंद आया कि मेरे बच्चे कम से कम संकल्प चलाएं। इसकी भी इकोनॉमी करो। कई बार बहुत टू मच सोच लेते हैं हम, व्यर्थ संकल्प जा रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं, बस संकल्प को क्यों लगी अंदर अंदर। तो इकोनॉमी सेवा केवल धन की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारी संकल्प की है, समय की है। हम ऐसे ही समय गंवा रहे हैं, जहां बैठ गए वहां 15-20 मिनट 1 घंटा ऐसे ही बातें कर रहे हैं। उसके अंदर बाबा का एक बहुत रमणीक शब्द है, खर तेल कुछ नहीं, माना उसका अर्थ कुछ भी नहीं, लेकिन बातें चल रही हैं, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, सरकार ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, यहाँ वो हो रहा। बाबा कहता है तेरा क्या जाता है, संकल्पों को क्यों व्यर्थ कर रहे हो, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं समझता हूँ बाबा के सब बच्चे संकल्प की शक्ति का महत्व तो जानते हैं, जानते हो संकल्प की शक्ति, मार नहीं रहे संकल्प को, हम दबाते नहीं है, लेकिन संकल्प की शक्ति से हम कितनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं। योग क्या है, हमारा योग जड़ नहीं है, शून्य नहीं है, संकल्पों को हम शून्य नहीं कर रहे हैं, उनको हम सेवा में लगा रहे हैं। संकल्प से हम साकार वतन से अव्यक्त वतन में जाते हैं, यही वाहन है ना, इसको भक्ति में क्या कहा, अंतर मन वाहन, अंदर का जो मन है मेरा मन, वही मेरा वाहन है, और इस मन के वाहन से संकल्प की शक्ति से हम सूक्ष्म लोक, मूल वतन और दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने की सेवा कर सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन संकल्प हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। इसलिए यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ की सेवा करने वाले स्नेही बच्चे, पहले अपने संकल्पों की इकोनॉमी करो, अपने समय की इकोनॉमी करो, ऐसे नहीं बैठ गए हैं घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर कहेंगे मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि आदत बनी है समय ही नहीं है। अरे समय जा कहाँ रहा है, इतना समय है, कितना समय आप क्लास करते हो, कितना समय योग करते हो, कितना समय भोजन करते हो, कितना समय सेवा करते हो, कभी चेक किया है, फिर भी कितना समय बचता है जो इधर की बातों में, उधर की बातों में, सोचने में, बोलने में व्यर्थ कर रहे हैं। अगर हम सब अपने संकल्पों पर पहरा दें, संकल्प हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हमारा व्यर्थ बच जाएगा और बहुत बड़ी संकल्प की सिद्धियां प्राप्त होने लगेंगी। जो सोचोगे वो होने लगेगा, सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएगी। यज्ञ की वृद्धि हमारी दादियों ने अपने संकल्प के आधार से की, संकल्प को बहुत पॉजिटिव बनाया, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक, जरा भी उसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं। अगर जरा भी नेगेटिविटी है, माना वो यज्ञ के अंदर विघ्न है। चेक करें सचमुच यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ स्नेही हैं, या जो आया वो सोच रहे हैं, क्योंकि सोचने से क्या होता है पता है, एक ओरा बनता है। अब इसको थोड़ा साइंटिफिक समझना, जिस प्रकार के हम विचार करते हैं, विचार हमारे इस चेहरे के चारों तरफ एक बहुत प्रकाश का घेरा बनाते हैं, जिसके बहुत शुद्ध और पॉजिटिव विचार हैं, अच्छे विचार हैं, उनका पवित्र स्वच्छ सफेद ओरा है, आभामंडल है। इसलिए देखो हमारे जितने धर्म आत्माएं, धर्म के बड़े हुए, कोई धर्म स्थापक हुए, पवित्र आत्माएं आई, उन सब के फोटो जब बनाते हैं तो उनके चारों ओर एक लाइट का क्राउन दिखाते हैं, वो हमारे विचारों से क्रिएट होता है। अगर हम यज्ञ के सच्चे स्नेही और यज्ञ रक्षक हैं, तो हम सबको एक ध्यान देना चाहिए कि हमारे पवित्र विचारों से जो आभामंडल बनता है, उस वही वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यज्ञ निर्विघ्न तभी रहता है जब यज्ञ में रहने वाले, यज्ञ में आने जाने वाले बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों में रहते हैं। कभी भी संकल्प नहीं करे क्यों, कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर नेगेटिव संकल्प होते तो आज यज्ञ यहां नहीं पहुंचता जहां पर पहुंचा है। हमारी दादियों ने बस बाबा ने जो कहा वही करना है, बस और कुछ नहीं करना। कैसे इसकी वृद्धि हो, कैसे इसका विस्तार हो, कैसे निर्विघ्न रहे, वही सोचा और कुछ नहीं सोचा। तो सबसे बड़ी सेवा यज्ञ के स्नेही बच्चों की है कि हमारे संकल्प बहुत शुद्ध और पवित्र हों, जरा भी किसी आत्मा के कमी कमजोरी अवगुणों को देख करके अपने संकल्पों में व्यर्थ की क्यों नहीं लगाना, उसकी इकोनॉमी करो, यज्ञ आगे बढ़ेगा, फलीभूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी यज्ञ की रक्षा यज्ञ स्नेही बच्चे करते हैं, उनको स्नेह है बाबा की यज्ञ से, और वो पवित्र शुद्ध विचारों में रमण करते हैं। शुद्ध विचार पवित्रता की शक्ति इस यज्ञ की बाउंड्री की सुरक्षा करती है। जहां इम्प्योरिटी आई, अपवित्रता आई, देहभान आया, दैहिक दृष्टि वृत्ति बनी, वहां पर आसुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। जो भटक रहे हैं ना इस वायुमंडल के अंदर, कई ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर के बिना भटक रही है, मालूम है ना, जानते हो आप सब। कई अचानक शरीर छोड़ते हैं, हजारों की संख्या में, कुछ भूकंप आ गया, कहीं पर ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कहीं ऐसे कुछ कारण बन गए, तो कई आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं। अब जब शरीर छोड़ दिया, परम धाम का गेट तो खुला नहीं, जो आत्माएं उड़ करके ऊपर जाएंगी कहां जाएंगी, जन्म तो मिलेगा नहीं इतनी जल्दी, इतने गर्भ थोड़ी तैयार बैठे हैं जो जाके प्रवेश कर लेंगे। तो वो आत्मा इस वायुमंडल के अंदर जब तक उनका नया शरीर तैयार होता है तब तक इसी वायुमंडल के अंदर रहती हैं। और अगर हमारा कमजोर संकल्प, अपवित्र संकल्प, विकारी संकल्प है, तो वो तो ही आत्माएं इच्छा वाली है, उन्हीं संकल्पों से उनका शरीर छूटा है, तो हमारे कमजोर संकल्प, अपवित्र संकल्प वहां पर उन आत्माओं को चांस दे देते हैं। और फिर जब वो प्रवेशता होती, छाया आ जाती है, तो कितना यज्ञ के लिए विघ्न हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, ये हम सब की जवाबदारी है कि हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ स्नेही बच्चे हैं, इन आत्माओं को हम मुक्ति देने वाले हैं, शांति का दान देने वाले हैं। वो आत्माएं कहीं किसी को परवश न बना दे। कई लोग कहते हैं मैं चाहता नहीं था, हो गया मेरे से, गलत करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल दिया। हो सकता है पिछले संस्कारों के आधार से बोला हो, लेकिन कई परवश हो जाती हैं उनकी जो आत्माएं हैं उनकी छाया के नीचे, इसलिए वो गलत कर बैठते हैं। अब ये तो पता नहीं चलता लोगों को, कहते ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, कोई तो करा दिया। इसलिए हम सबको एक ध्यान देना है, हमें बाबा की छतरी के नीचे रहना है, याद की छतरी के नीचे रहो। बहुत सर्व शक्तियों से संपन्न पवित्र ओरा अगर आप बना लेते हैं तो अपनी सुरक्षा और यज्ञ की रक्षा, इस पर बहुत अंडरलाइन करना। ये जो योग भट्टियां कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, बार बार इसके लिए फोर्स मिल रहा है, करो करो, कारण यही है कि हमारे विचारों में पवित्रता इतनी आ जाए जो देहभान खत्म हो जाए। जो आत्माएं देह अभिमान में रहती हैं वही यज्ञ के आगे विघ्न है, और वो रक्षक तब बनती हैं जब अपनी देही अभिमानी स्थिति में रहती है। मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, इस संकल्पों में रमण करो। फिर बोल की एका नामे, कोई भी ऐसा बोल मुझ आत्मा के द्वारा न निकले जो किसी भी आत्मा को अपसेट कर दे, दुखी कर दे, किसी के दिल को घायल कर दे। बहुत ध्यान देना इस पर। आज घरों में जो झगड़े हो जाते हैं ना, छोटी छोटी बात पर दूरियां बढ़ जाती हैं, मतभेद हो जाते हैं, घर में बंटवारे हो जाते हैं, उनके पीछे इस जबान का बहुत हाथ है। बोल दिया, निकल गया, एक अपशब्द बोल दिया, एक थोड़ा सा ऐसे शब्द बोल दिए जो उसको लग गए, फिर संबंध बिगड़ गए, दूरी बढ़ गई, संबंध इतने समय वाले दूर हो गए। तो बाबा कहता है यज्ञ के अंदर भी यज्ञ रक्षक बच्चों को, यज्ञ से नहीं बच्चों को, अपने बोल पर बड़ा कंट्रोल रखना है। वही बोलो जो मेरे काम का है, वही बोलो जो दूसरों को सुख देने वाला है। इसलिए क्या स्लोगन है, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो आवश्यक है वही बोलो, जितना जरूरी है उतना ही बोलो। इस पर कंट्रोल कर लेंगे ना तो आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। सब प्रकार से आप यज्ञ के सहयोगी बन सकते हैं, यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। संपत्ति जो बाबा ने दी है वो बहुत बड़ी, जो भी संपत्ति है, ज्ञान की है, गुणों की है, शक्तियों की है, स्थूल में भी है, वो कोई भी संपत्ति कहीं भी व्यर्थ न जाए। बचाओ, बचत की स्कीम बनाओ। जितना आप बचत करोगे ना, आपको मालूम है दादी गुलजार को बाबा ने एक बार कहा था, इस बच्ची का रथ बाबा ने इतना समय यूज किया। क्यों किया? क्योंकि इस बच्ची ने अपने संकल्प और बोल की एनर्जी को बचा लिया, कहीं भी व्यर्थ जाने नहीं दिया, वो भगवान के काम आ गई। क्या ऐसा समझते हो कि अगर हम इसको बचाएंगे तो भगवान की स्थापना के यज्ञ की सुरक्षा में मदद करेगी? यज्ञ से नहीं, बच्चों को अपनी एनर्जी को बचाना है, व्यर्थ नहीं करना है। जहां भी व्यर्थ जा रहा, जहां लीकेज है, उसको स्टॉप कर दो। आप यज्ञ रक्षक बन जाओगे, यज्ञ स्नेही बन जाओगे। यज्ञ में जो भी ऐसी कमी कमजोरी संस्कार है, स्वाहा हो जाएंगे। तो यज्ञ रक्षक बच्चों की एक नामी इकोनॉमी और सबसे बड़ा यज्ञ स्नेही बच्चों को ध्यान देने वाली बात है, एक मत, एकता के सूत्र में बंध करके रहना। लोग जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारों की सफेद ड्रेस है, ब्रह्मा कुमारों की एक जैसी भाषा है, एक जैसा ज्ञान है, ऐसे ही अंदर के विचार भी एक जैसे हों। कभी भी विचार भिन्न हो भी जाएं, लेकिन मन में कभी भेद ना है, हम सब एक परिवार के हैं। एक बाबा का नाम मुझे रोशन करना है, कभी भी तेरे मेले में आकर के, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसे करता, यहाँ ये होता, हमें कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनानी है। अगर संगठन ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहने एक होकर के चलते हैं, एकता के सूत्र में पिरोते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, झुक करके चलते हैं, सहन करके चलते हैं, तो वो यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बन जाते हैं। इसलिए इस पर बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। जहां पर भी ब्रह्मा कुमारियों में दो पार्टी दिखाई देती हैं, वहां पर कई प्रकार के यज्ञ में विघ्न आते हैं। इसलिए कभी भी हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म ना हो जो लोग कहें इनके विचार एक नहीं है, ये एक होकर के नहीं चलते हैं, इन पर कोई कंट्रोलर नहीं है, इनको कोई कहने वाला नहीं है। हम सबको बहुत इस पर ध्यान देना है। हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं, हम बाबा के यज्ञ की रक्षक आत्माएं हैं, यज्ञ स्नेही हैं। और स्नेही जो होते हैं परिवार में, एक दूसरे के भी साथ अगर हमारा स्नेह होता है, तो परिवार में जहां स्नेह होता है वहां बातों को समाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। कहीं भी कोई बातें हैं, अगर आपका स्नेह सच्चा है, आपने अपने स्नेही की बात कोई कमी कमजोरी देख ली, तो ऐसे नहीं है ढिढोरा पीट जाओ, जाके इधर बताओगे उधर बताओगे, कहेंगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा सब, छोटी मोटी बातें होती हैं। अब इतना बड़ा परिवार वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, इतना विस्तार हो रहा है, लाखों की संख्या में बाबा के बच्चे बन रहे हैं। भिन्नताएं तो हैं, संस्कार अलग हैं, खान पान रहन सहन हर प्रकार की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो जहां वैरायटी है वहां थोड़ी बहुत बातें तो होंगी ही, लेकिन बातों को समाना, बातों में रहते हुए उनकी बातों को सहन कर लेना, कभी भी वायुमंडल में इधर उधर चर्चा में न लाना, ये यज्ञ स्नेही बच्चों की निशानी है। जो स्नेही है सच्चे, वो कभी अपने परिवार की बात को बाहर नहीं फैलाते, सदा ध्यान रहता है ये परिवार की बात है। लौकिक में मान लो माताएं कोई बच्चा आपका भूल करके आए, कोई गलती करके आए और अपने आप आकर के माँ को सुनाए, मम्मी मेरे से आज ये हो गया, तो मम्मी क्या करेगी? वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, तूने मुझे सुना दिया ना, अब आगे नहीं करना, तुम अपने बाप को भी नहीं सुनाना। इतना उसके अंदर ये होता है कि कहीं इसकी बात कहीं फैल ना जाए, कहीं इधर उधर कोई लोग कहेंगे क्या ऐसा करके आया, ऐसा किया इसने, ऐसे तो नहीं पड़ोसी को बताएगी जाके मेरा बच्चा आज ये काम गलती करके आ गया। समाती है, समा लेना, परिवार की बात है, मेरे परिवार की बात है, मुझे इसको कहीं भी वर्णन चिंतन नहीं करना। अगर कोई ने कोई गलती की है, मैं शुभ भावना का दान दे करके, उसको सहयोग दे करके उसकी कमियों को समाऊं और समाप्त करूं। तो यज्ञ सनेही जो है, यज्ञ रक्षक है, यज्ञ वत्सों की कोई भी बात को सुन करके इधर उधर वातावरण नहीं बनाते, सुनते हैं, समा लेते हैं। ये संगठन को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे अच्छा साधन है। एक हो जाएंगे हम सब, लेकिन जहां पर तुमने मेरी एक बात इधर सुनाई, मैं दो बातें तुम्हारी इधर सुनाई, सारा वायुमंडल खराब हुआ और उस वायुमंडल से यज्ञ के आगे विघ्न आया। भगवान के रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ के ऊपर सबने कहा, यहां भी ऐसे होता है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी ये होता है, बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। अगर बाबा के इतने सत्य ज्ञान में कोई अंगुली उठाए, इतने ऊंचे नए विश्व की स्थापना, चैलेंज क्या है? हम लोग दूसरों को कहते हैं हम एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, ऐसे एकता की स्थापना कर रहे हैं। और एकता की स्थापना के लिए जो यज्ञ है और यज्ञवत्स हैं, वो अनेकता का वातावरण बनाए, तो उससे बड़ा विघ्न क्या होगा? वो कुल कलंकित हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ रक्षक, यज्ञ स्नेही बच्चे कभी भी अनेकता में एकता करेंगे, एकता में अनेकता नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? कभी भी कोई की कमी देखो, कमजोरी देखो, स्वभाव, गलती हो गई, भूल हो गई, ये इसकी भूल नहीं, ये मेरी भूल है, मेरी शक्ति से, शुभ भावना की शक्ति से इस बात, इसको चेंज करना चाहिए था, मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। परिवार की गलती में बड़े समझते हैं, अगर बच्चों ने गलत किया तो बच्चों ने कहां से सीख लिया, क्या मेरी गलती तो नहीं है इसमें? इसलिए हम सब यज्ञ स्नेही जब कहते हैं, यज्ञ रक्षक कहते हैं, तो हरेक की कमी, कमजोरी, संस्कार, स्वभाव को देखते हुए न देखना, और अगर दिखाई देती है तो उसको समा लेना, उसको परिवर्तन करने के लिए शुभ चिंतक बनना, शुभ भावनाएं रखना, इसको सच्चा स्नेह कहते हैं, प्यार कहते हैं। तो हम सबको यज्ञ के, बाबा के इस किले को, बाबा ने ये यज्ञ नई सृष्टि की स्थापना के लिए स्थापित किया है, इसमें हम सबको प्रत्यक्ष प्रमाण, सपूत बच्चा बन करके सबूत देना। सबूत यही है जो बाबा ने मुझे पालना दी है, जैसा बाबा मुझे बनाना चाहता है। हम सबका यही लक्ष्य हो कि मैं ऐसा भी दिखाऊं। ऐसे नहीं सोचो कौन बना है, कोई बना है या नहीं बना है, लेकिन बाबा जैसा बनाना चाहता है, हर एक लक्ष्य रखे मुझे ऐसा बन के दिखाना है, ऐसी मूर्ति बनना है। वो मूर्ति नहीं, वो मूर्ति जो पूजी जा रही है वो हमारी जड़ यादगार है। जब हम चैतन्य में बने हैं तब तो आज इतनी मूर्तियों की पूजा हो रही है, उन मूर्तियों के दर्शन से लोग प्रसन्न हो रहे हैं। और हमारे दर्शन क्या, हमको देख करके कोई किनारा करके चला जाए, इसके सामने नहीं जाओ तो कैसी मूर्ति है ये? अपनी मूर्ति को देखना, मैं आत्मा परमात्मा की प्रिय मूर्ति हूं। कहां मंदिर है हमारा? ये शरीर मंदिर है, समझते हो? आत्मा जो भगवान की प्रिय मूर्ति है, उस मूर्ति का मंदिर कहां है? शरीर है। इस शरीर रूपी मंदिर को सजा के, साफ स्वच्छ करके, बिल्कुल पवित्र बना करके रखें, इसमें भगवान की प्रिय मूर्ति आत्मा विराजमान है, जिसकी माला स्वयं भगवान सुमिरन करता है। नशा चढ़ता है कभी, ये सोचते हो कभी ये बात, मुझ आत्मा के गुणों की माला भगवान सुमिरन करता है, मेरे बच्चे ये महान आत्माएं, देव आत्माएं, पुण्य आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं, कितने ऊंचे समान बाबा हम बच्चों को याद दिलाता है। तो हम सब ऐसी चैतन्य मूर्ति बन करके रहें, जो मुझ आत्मा का दर्शन करके हमारे वाइब्रेशन से आत्माएं भरपूर हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। सोच रहे हो कि सोचते हो कोई कि दूसरे की मूर्तियां बनी होंगी, जितने मंदिर बने हैं, जितने मंदिरों में पूजा हो रही है, किसकी हो रही है, जरूर साकार में कभी हुए होंगे ना, कैसे हो रही है, तो कौन थे वो। आप सबको ये नशा रहना चाहिए, हम सब बाबा के बच्चे। बाबा कहता है चाहे माला का लास्ट मणका भी है, वो भी बहुत बहुत वैल्यूबल है, बहुत बहुत महान है, क्योंकि भगवान को उसने बाबा कहा है, इंसान को नहीं, भगवान को पहचान के कहा है। इतना ऊंचे नशे में रह करके अपनी मूर्ति का श्रृंगार करो, अपनी मूर्ति को सजाओ। कहीं भी मूर्ति खंडित कहां रखी जाती है, म्यूजियम में रखी जाती है। संपूर्ण मूर्ति जो होती है उसको मंदिर में रखते हैं, तो हम खंडित मूर्ति नहीं है, आत्मा मूर्ति है, और इस शरीर के अंदर, इस मंदिर के अंदर वो विराजमान है। इसलिए बहुत पवित्र शुद्ध विचार, जैसे मंदिर में कहते हैं सुगंध होती है, वहां पर भूत प्रवेश नहीं होते, मंदिर के अंदर भूत नहीं होते, भूत कहां होते, खंडहर में होते हैं। इस मंदिर के अंदर कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का भूत प्रवेश न हो, इसका ध्यान रखना, ये मंदिर है, मैं मूर्ति हूं। ऐसी स्मृति अगर रखेंगे तो आपके विचार यज्ञ की रक्षा करेंगे, यज्ञ को आगे बढ़ा देंगे, यज्ञ पिता का नाम रोशन होगा। मैं तो एक ध्यान रखता हूं, बाबा के यज्ञ में मेरा यज्ञ पिता और यज्ञ माता मुझसे प्रसन्न रहे। बस बच्चे की आस क्या रहती है, बच्चे की आस ये रहती है, लायक सपूत बच्चा सोचता है मात पिता की दुआएं मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम सबको अपने मात पिता की, हमारे मात पिता कौन है, अलौकिक मात पिता है ना, कि लौकिक अभी भी समझ रहे हो ये माँ है ये बाप है, वो तो शरीर को जन्म दिया, लेकिन ये ईश्वरीय जन्म, अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म जहां से मिला, ये ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, शिव बाबा हमारा बाप है, ये यज्ञ के पिता यज्ञ माता हैं। अगर यज्ञ माता और यज्ञ पिता को किसी भी ब्राह्मण आत्मा ने प्रसन्न कर लिया, यज्ञ रक्षक बन करके, यज्ञ में सेवा दे करके, तो उसकी कोई कामनाएं शेष नहीं रह जाती। हम लोगों को ये अनुभव है इस समय कि हमारे यज्ञ माता, यज्ञ पिता, हमारी निमित्त दादियां हमसे अगर प्रसन्न हैं, तो आज सब कुछ भरपूर है, कुछ कामना नहीं रही, संकल्प भी उठाने की जरूरत नहीं, आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो रही हैं। बाबा आपको भरपूर करेगा, माला माल कर देगा, क्योंकि वैसे भी कहते हैं यज्ञ माता को, सरस्वती माँ को कामधेनु मार के रूप में दिखाया है, देखा होगा आपने। कहते हैं एक कपिल मुनि थे, सुना है कहानी, कपिल मुनि थे, और कपिल मुनि के पास एक गाय थी कामधेनु, और उस कामधेनु के पास इतनी शक्ति थी कि कोई भी उसके सामने जाता था उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती थी। ब्रह्मा बाबा कपिल मुनि है और कोई दूसरा नहीं, कपिल मुनि है, कपिल कहते हैं जोड़े को, युगल को, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कंबाइंड कपल है, और इस कपल मुनि के पास ये सरस्वती माँ, ये दादियां हमारी कामधेनु हैं, अगर इनके हम सच्चे सपूत बच्चे बन करके रहते हैं, आज्ञाओं को पालन करते हैं, उनके श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं, तो कामधेनु माँ और कपल मुनि बाप अगर प्रसन्न हो गया तो कोई भी कामना नहीं रहेगी, सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसी भावना के साथ आप सब ऐसे यज्ञ के बच्चे हैं, ऐसे यज्ञ पिता के बच्चे हैं, हम सब की संकल्प बोल कर्म एक एक पर इतना टेंशन हो कि यज्ञ रक्षक बन करके हम रहें। कभी भी यज्ञ के ऊपर मेरी किसी भी एक्टिविटी से आंच ना आए, कोई ऐसा एक्टिविटी ना हो जो लोग कह रहे ब्रह्मा कुमारी में जाता है, ये भी ऐसे करता है, ये भी ऐसे बोलता है, किसका नाम वाला नुकसान हो गया, किसके नाम पर दाग लगा, ब्रह्मा बाप के नाम पर। तो ध्यान देना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना बाबा कहता है मासिक अगर नहीं है, एक एक कर्म पर ध्यान देना होगा। ना हम ऐसे उधर उधर खा सकते हैं, ना इधर उधर बैठ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सबकी नजर किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। जिसके ऊपर बहुतों की नजर होती है उनका बहुत अपने ऊपर ध्यान रहता है। जैसे कोई एक्टर स्टेज पर पार्ट बजाता है, हीरो एक्टर होता ना, तो सारी सभा उस पर देखती क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक एक एक्ट पर उसका ध्यान रहता है। बाबा ने हमें अपना बना करके इस विश्व के ग्लोब पर खड़ा किया है, सारे विश्व की नजर है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां केवल समर्पित नहीं लेकिन प्रवृत्ति वाले भी क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार में आते हैं, कैसी इनकी प्रवृत्तियां हैं, कैसे इनके तनाव मुक्त जीवन है। अगर जरा भी टेंशन है तो लोग क्या कहेंगे, जैसे सब ऐसे ही है। आज कोई के घर में कोई ने शरीर छोड़ा, उस घर में हाय 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 रोना शुरू ढोना शुरू है। अगर ब्रह्मा कुमार के घर में भी कोई चला जाए और उसके घर में भी ऐसे ऐसे हो रहा हो तो क्या कहेंगे, इनको ज्ञान है, ये यही समझ है इनको। कहते तो बड़ी बड़ी बातें, आत्मा विनाशी है, अजर है, अमर है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, और देखो शरीर छोड़ गया, जैसे दुनिया वाले रोते ऐसे ये भी रो रहे हैं। कितना ध्यान रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रहता है माताओं को भाइयों को अंडरलाइन करना। अब हम बाबा के यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ स्नेही हैं, यज्ञ सहयोगी हैं। केवल धन दे देना ही सहयोग और स्नेह नहीं है, धन तो जितना बाबा के कार्य में लग जाएगा, बाबा कहता है अगर थोड़ा भी लगा दिया तो तुमको इसका रिटर्न कई गुना हजार पदम गुना मिल जाएगा, वो तो मिलना ही है। तो धन से सहयोग जितना जो कर सकता है भगवान के कार्य में नई दुनिया की स्थापना में मेरा लग जाएगा, तो परमात्मा को भगवान को हम अपने बंधन में बांध लेंगे, वो हमके रिटर्न करेगा। तो धन तो लगाना ही है, वो तो सफल करना ही है, क्योंकि यज्ञ में लगेगा तो यज्ञ पिता प्रसन्न होगा और दुआएं देगा और उसके रिटर्न में कई गुना मिलेगा। लेकिन धन के साथ साथ यज्ञ हमारा सदा सुरक्षित रहे, यज्ञ सदा हमारा निर्विघ्न रहे, सदा आगे बढ़े, इसके लिए हम सबको अपने संकल्प पर, अपने बोल पर, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। तब कहेंगे यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सहयोगी बच्चे। ठीक है, तो आप सब ऐसे बन करके, सिर्फ भट्टी करके नहीं, लेकिन ऐसे पक्के सच्चे यज्ञ रक्षक बन करके जाना। कोई भी ऐसा कर्म न हो जो लोग कहें, ब्रह्मा कुमारियों के पास भी शायद ऐसा होता है, कभी भी किसी की आंख ऐसे न अंगुली उठे जो आप बाबा के नाम पर दाग आ जाए। तो हम सबको बहुत बहुत अपने कर्मों पर, अपने चरित्र पर, अपने बोल पर, अपनी चलन पर ध्यान देना है, तब हम यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक कहला सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।